तद्यच्छ मन्युं स्मृक्ष हस्तयाद्या मोदे तसाधुरपि विश्वकस्पहत्या लोकाश्च निर्विदितमा प्रतियन्ति सर्वे रूपं नरसिंह विभाय जना स्मरन्ति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अतएव हे नरसिंह भगवान, नरसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है। क्योंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तात्पर्य इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प या तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था। अतएव अब भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता ना थी। भक्तगण जब भी संकट में हों वे नरसिंह देव के रूप का स्मरण कर सकते हैं। अतएव नरसिंह देव का प्राकट्य तनिक भी अशुभ ना था। भगवान का प्राकट्य सदैव ही पूजनीय तथा समस्त विज्ञजनों एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग जो है नवम स्कंद जो है अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो पिछले कुछ अध्यायों से हम लोग जान पाए कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए और अब प्रकट होने के बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब इस वध के पश्चात भगवान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। इतना बड़ा अवतार लिया भगवान ने, इतना सुंदर, इतना विभत्स, लेकिन कितनों को मारा? एक ही विजय में, दो इनको मारा तो सब विजय हो गया। लेकिन जैसे ही मारा, लेकिन भगवान का भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। एक तो कारण यह है कि उनका जो प्रिय प्रहलाद भक्त था, उसने कभी भगवान को बुलाया नहीं था, है ना। भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। और यहां तक कि भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने मेरा एक भी नाम बार नाम ले लिया, गित्वा माम च नामानी, जिन्होंने एक बार भी ले लिया, हो सकता है वो मुझे भूल जाए, लेकिन मैं उनको कभी नहीं भूलता। और प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान को पुकारा नहीं, जिस सेंस में कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। पिताजी पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको पूरी तरह से समाप्त करने का, और होली का भी जो बताते हैं, वो भी गोद में लेकर बैठे, उसको जो वरदान प्राप्त था वो भी उसके सामने खराब हो गया, उसको जलना पड़ा। लेकिन कहीं पर भी प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में अपने मंत्र के अलावा, जो कि उन्होंने गर्भ में सुना था नारद जी से शिक्षा लेकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा कोई जप नहीं, सदैव भगवान को प्रणाम करते। तो इस प्रसंग से ये पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति का इतना फेथ है भगवान पर, इतना विश्वास है इस लेवल का, तो उस स्तर के विश्वास के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां, अगर कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहा है, फिर कोई और अन्य नहीं, ये जना पर उपासना, मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, तेषामित्य भूता नाम योगक्षेम अव्यहम है, मैं वहन करता हूं, भगवान कह रहे हैं। उसके पास जो नहीं है उसकी आवश्यकता मैं पूरा करता हूं, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, गारंटी दे रहे हैं भगवान भगवदगीता में। और हम लोग जानते हैं कि वो ऐसा हाथ करके LIC वाले भी योगक्षेम अव्यहम है हम की लाइन यूज करते हैं, भगवदगीता का कोट कर रहे हैं श्लोक कि हम जो है वहन करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर भगवान अपने भक्तों को साफ साफ गारंटी देते हैं कि अगर आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो, तो अनन्य का मतलब यह है कि फिर और कोई अन्य नहीं। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि हमारा स्तर भी प्रहलाद महाराज जैसा नहीं है, कि नहीं वो भाव नहीं है, ये बात अलग है कि हाँ कुछ समय कुछ लेक्चर सुनकर 7 डे सेशन कोर्स कर हमारी कन्विक्शन बढ़ जाती है कि ठीक है, कृष्ण भगवान भी भगवान है और विष्णु तत्व वाले सभी भगवान है। और कुछ समय तक तो हम लोग इसी भाव में रहते हैं कि अब हमें जो मालूम है वो सबसे ज्यादा मालूम है, और उसके अहंकार में हम लोग कईयों को तिरस्कार कर देते हैं, कईयों को ऑफेंड कर देते हैं, हमें लगता है कि यस वी आर द बेस्ट एंड वी आर द सुप्रीम। लेकिन जो भक्त है, जो ये जानता है कि भगवान की शरण ग्रहण करने से, पूरी तरह शरण ग्रहण करने से भगवान फिर पूरी तरह रक्षा करते हैं, तो इस प्रसंग में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहीं पर भी किसी और की मदद के लिए नहीं पुकारा, माता का नाम नहीं लिया, किसी और व्यक्ति के पास नहीं गए, बचने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सदैव भगवान का स्मरण करते रहे। तो अब जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है, क्योंकि अगर कोई इस लेवल का सरेंडर दिखा रहा है या इस लेवल पर सरेंडर है, तो योगक्षेम व्यहा में हूं, जहां भगवान ने बोला कि मैं स्वयं आता हूं, तो वो इस प्रसंग में भगवान ने आके पूरा कर। और अगर उस लेवल का नहीं है, उस लेवल से कम है, तो फिर भगवान हो सकता है स्वयं ना आए, है ना, फिर वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा या उन सिचुएशंस को इस प्रकार फेवरेबल कर देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और हम देखते भी हैं हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, भक्तों के जीवन में भी जो, तो किसकी शरण में जाते हैं? वो भगवान की शरण में आते हैं। आरती जिज्ञासी अर्थार्थी भक्त, है ना, ज्ञानी चरित्र सेवक, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग शरण में आते हैं। तो हर व्यक्ति का लेवल एक नहीं है, ज्ञानी को और जिज्ञासु को, जिज्ञासु को भी अच्छा बोल सकते, ज्ञानी को भगवान ने बोला है कि ये बेस्ट है इन सब में, तो जो ज्ञान के अनुसार भगवान की शरण में आता है, हो सकता है उसका फेथ उत्तम फेथ ना हो, मध्यम फेथ हो या कनिष्ठ फेथ हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में रहे और शरणागति के अंगों का पालन करेंगे, जिससे भगवान की शरणागति बढ़ती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 6 सिम्टम बताए शरणागति के, अनुकूलन अनुकूल भाव से, प्रतिकूल वर्जनम, अर्थात जो प्रतिकूल चीजें हैं भक्ति के उसका त्याग करें और जो अनुकूल चीजें हैं उसको अपनाएं, रक्षति इति विश्वासो, भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास होना चाहिए और मेरे संरक्षक हैं ये पता होना चाहिए कि वो मेरी हर परिस्थिति मेरा संरक्षण करेंगे, मेरा भरण पोषण करेंगे। तो जब भगवान के भक्त इस प्रकार भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अपना विश्वास बढ़ाते हैं तो फिर भगवान भी, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जिस मात्रा में आप मेरी तरफ आएंगे, क्या बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवत गीता को इसलिए सारे उपनिषदों में सर्वोपनिषद कहा क्योंकि भगवान ने यहां पर अपना दिल खोलकर ज्ञान दिया, उनके हृदय में क्या है भक्तों के प्रति साफ साफ बताया। वेदों में, उपनिषदों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अन्य पुराणों में, कई तरह के इतिहास, कई प्रकार की कथाएं, बहुत सारे प्रसंग, उसमें कहीं कृष्ण का प्रसंग, और कहीं विष्णु के अवतार का प्रसंग, इतना कुछ रचना करने के बाद भी जब व्यासदेव परेशान थे तो नारद जी ने कहा क्योंकि आपने अभी तक कोई अमल पुराण की चर्चा नहीं की है जिसमें खाली कृष्ण की भक्ति का हो, इसलिए तुम दुखी। तो इतने सारे वेदों में, इतने सारे ग्रंथों में भी पढ़कर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, स्वर्ग से आसक्त हो जाएगा या और किसी विधि विधान से आसक्त, किसी और डेमिगॉड से अटैच हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल हम लोगों को कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के प्रति आकर्षित करता है। और भगवान ने जहां पर अपने हिसाब से अपना मत बताया कि भैया इससे ऊंचा कुछ नहीं, इसलिए बताते भगवत गीता को विषय में, जैसे अभी इस देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया कि जापान में जाके ये भगवत गीता बांटी है ना, और उन्होंने बोला कि मेरे पास एक प्रधान, देश का प्रधानमंत्री, जैसे हम कई बार राजाओं के एग्जांपल देते ना कि व्यक्ति राजा के पास गया कुछ मांगने के लिए, उसने कुछ मांग लिया गलती से, तो उसने कहा ये तो बेकार की चीज मांगी ना, वो कह रहे हैं हमारे इस देश का, हिंदुस्तान का राजा दूसरे देश में जाके क्या बोलता है कि मेरे पास इससे अच्छी चीज देने के लिए नहीं है, और कहा कि दुनिया के पास भी इससे अच्छी चीज लेने के लिए नहीं। मतलब गीता की कितनी महिमा उन्होंने गाई इस बात के सेंटेंस से कि एक राजा होकर देश का जिसके पास सब कुछ है वो कुछ कुछ भी दे सकता है ना, लेकिन वो कह रहे मेरे पास गीता से अच्छी चीज नहीं है किसी को देने के लिए, और फिर लेने वाले के लिए, लेने वाला तो अपनी कम बुद्धि के कारण कुछ भी मांग सकता है, लेकिन अगर बेस्ट से बेस्ट चीज की बात की जाए तो भगवान ने बोला कि इससे अच्छा कुछ उनके पास लेने के लिए भी नहीं है। जैसे एक बार एक स्वप्न में एक सेठ को, एक व्यक्ति को शिव जी ने कहा तुम जाओ वृंदावन में, अगर तुम्हें धनी चाहिए तो जाओ वहां पर सनातन गोस्वामी जी मिलेंगे उनके पास जाओ वो तुम्हें धन देंगे। वो चले गए, वहां जाकर सबसे पूछा तो पता चला जी वहां पर एक साधु है वो धन देंगे, वो कुटिया में जप कर रहे 500 साल पहले की बात। उनसे पूछा जी मैं ऐसे ऐसे आया हूँ शिवजी ने भेजा आपके पास कुछ बहुत बड़ा धन है, उन्होंने कहा आपसे ले लो, तो उन्होंने कहा वो डस्टबिन में पड़ा है बाहर, डस्टबिन में, तो डस्टबिन खोला तो देखा क्या था उसमें, पारस मणि। आपको लग रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज अगर थैले में तिजोरी में रखेंगे तो कोई भी चोर कर सकता है ना, सबको मालूम उधर ही रखा है, इसलिए वहां से बचाने के लिए इसको कहा रखा था डस्टबिन में है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा डस्टबिन में इसलिए रखा ताकि चोर वहां तो नहीं देखेगा मैं डस्टबिन में थोड़ी देखेगा। भाव ये नहीं था, जब उसने देखा भाई ये पारस मणि है जिसको जहां टच करो वो सोना बन जाता है, मोर की तरह नाचा हो, और उस पारस मणि को लेकर चला गया। रास्ते में जाते जाते उसके मन में विचार आया कि भाई इतने बड़े संत, स्वयं भगवान ने स्वप्न में आके बोला कि इनके पास सबसे अमूल्य चीज पड़ी है, और मैं हैरान हूं कि ये जो अमूल्य चीज उन्होंने कहां रखी हुई है डस्टबिन में, समझ नहीं आया। अगर इतनी अमूल्य चीज डस्टबिन में है तो जो अमूल्य फिर वो कहां हो सकती है। तो गए उनके पास दोबारा, फिर प्रणाम किया, कहा महाराज आपने मेरे को बहुत बहुमूल्य चीज दी है पर मुझे लगता है कि इससे भी कुछ ज्यादा अमूल्य चीज है, क्योंकि आपने इतनी बहुमूल्य चीज को डस्टबिन में डाला हुआ है और आपने इतनी आसानी से दे दिया ना, अनुकूल कुछ नहीं किया, नहीं आधा ले लो या आधा वापस दे देना, ऐसे कुछ नहीं करा आपने, मुझे दे दिया वो जो डस्टबिन में चीज थी, इसका मतलब आकर उसको चोर भी है। तो सनातन को समझे कि हाँ इससे भी बहुमूल्य, इससे भी अमूल्य चीज है जिसका मूल्य नहीं। हाँ कहता वो दो ना, मुझे तो उसके लिए बोला था स्वप्न में, कहते उसके लिए बोला था। तो उन्होंने कहा ठीक है यहां बैठो, और मैं तो अपना बीबैग ऊपर भुलाया, तो उन्होंने अपना एक झोली वाला और पकड़ाया, कहते ये लो इससे अमूल्य कुछ नहीं है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे अमूल्य कहते कुछ नहीं। उन्होंने जप करना शुरू कर, उनको लगा बस हो गया तो जीवन सफल। तो जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त जिनका विश्वास है भगवान के पास, तो भगवान ऐसे भक्तों की पर्सनली आके रक्षा करते हैं। यहां पर जब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए, देखिए गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है कि इस हिरण्यकश्यपु ने हाथी के पैरों के नीचे डाला उसको। जब देख लिया कि नहीं मरा तो छोड़ दे भाई, समझ जा कोई दिव्य व्यक्ति है, नहीं अपनी सिस्टर को बुला लिया कि भाई तेरे को तो फायर प्रूफ का वरदान मिला है तो उसको लेके बैठ जा। अब वहां पे भी देख ली कि बहन मर गई, सगी बहन मर गई, रक्षाबंधन जी जैसे खेलते थे वो सगी बहन भी नहीं रही, प्रहलाद महाराज बच गए, अब तो समझ आ जाना चाहिए था। कहते नहीं इसको फ्राई भी करेंगे, कढ़ाई पे डाला तो भी बच गया, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। पहाड़ों से नीचे फेंकवाया सिंहाचलम विशाखापट्टनम, वहां पर है वो पहाड़, उस पहाड़ के नीचे फेंका फिर भी बच गए तो भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब बेशर्मे की बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा देखिए। कोई व्यक्ति एक बार किसी से लड़े और पता चले पहले में थप्पड़ पड़ गया तो व्यक्ति कहता नहीं इससे लड़ना नहीं, इससे दोस्ती करना अच्छा है नहीं, समझदार व्यक्ति यही करेगा ना। लेकिन वो क्या देख रहा है कि 5 साल का व्यक्ति मेरा बेटा है ना, वो किस दिव्य शक्तियों से अप्लावित है, वो बच रहा है हर जगह, और मरवाने की कोशिश करी, पूरे पूरे सारे तरीके पूरे कर लिए, और भगवान हर जगह आके प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं, वो पुकार भी नहीं रहे है ना। कई बार जैसे एग्जांपल देते ना हमारी स्थिति और प्रहलाद महाराज की स्थिति में, बताते हैं कि जैसे आप कभी कुत्ते को पत्थर मारो और एक शेर को पत्थर मारो तो क्या फर्क है इन दोनों में? अगर आप कुत्ते को पत्थर मारोगे तो कुत्ता जो है पत्थर के पीछे भागेगा और लाके आपको दे देगा दोबारा मारो, और अगर आप शेर को मारो तो शेर क्या करेगा, वो देखेगा आया कहां से है, किसने मारा है, उसके पीछे भागेगा वो, है ना। तो यहां पर प्रहलाद सारे कष्टों के पीछे किसको देख रहे हैं, पिताजी को नहीं देख रहे, वो भगवान को देख रहे हैं। और जब हमें कष्ट आते हैं हम उसको देखते हैं, हम दुखों को देखते हैं, हम व्यक्ति विशेष को देखते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं कि इस वजह से हुआ है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कह दिया, समझे। तो हमारी मेंटालिटी और प्रहलाद महाराज की मेंटालिटी देखिए, वो हर कष्ट का स्रोत भी भगवान को मानते हैं, इसलिए वो आनंद में है, इसलिए वो सदैव जप कर रहे हैं, इसलिए वो सदैव भगवान, इसलिए पुकार भी नहीं कि आओ बचाओ। कई बार लोग बोलते हैं कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारी चीज पूरी नहीं हो रही होती है, तब क्या हम भगवान से मांग लें? आप मेरे से मतलब आप हमसे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं क्या अब हमारे कहने पे मांगोगे? ऐसे भक्त ऑलरेडी मांग रहे होते हैं, एक बात। दूसरी बात, उनको लगता है कि शायद भगवान को पता नहीं चल रहा मेरी समस्या क्या है। वो जो सर्व कारण कारण है, जो सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, हमें लगता है कि नहीं शायद भगवान को पता नहीं चल रहा कि मेरी समस्या क्या है, कि अगर ये अलग काम मेरा हो जाता तो इससे मैं ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता, और ये भी हो जाता। इसका मतलब क्या है, मैं जप तो कर रहा हूं, भजन तो कर रहा हूं, लेकिन शायद भगवान को पता नहीं है, तो चलो बता देते हैं। तो हमें बताने भी आते हैं कि भगवान देखो आपको तो पता ही है मेरी स्थिति क्या है ना, तो आप प्लीज ये चीज पूरी कर दीजिए, हम बोलते हैं। जबकि भगवान सर्वज्ञाता है, सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि और बेचारा भक्त जाएगा कहां, है ना, तो इसलिए वो मांग लेता है। ठीक है, मांग लीजिए, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम हो, चलो काम की इच्छा है या अकाम भाव से आ रहे हो, लेकिन आओ मेरी शरण में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मांगने वाले को भी मैं क्या करूंगा, वो मांगता रहे लेकिन धीरे धीरे उसकी मांगने की प्रवृत्ति में बदल दूंगा। क्योंकि कई बार बच्चा जिद करता है कि मुझे जो है सर्दी है, -5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जुकाम निमोनिया है, बट मुझे आइसक्रीम खानी है ना, तो पिता नहीं करते, माता पिता नहीं पूरी करते उसकी इच्छा। उसी तरह हो सकता है भगवान हमारे कर्मों को देखकर, हमारी इच्छाओं को देखकर, हमारे आने वाले भविष्य को देखकर किसी इच्छा को पूरा ना करें, लेकिन क्योंकि वो स्वराट है, फुल्ली इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकते हैं, सब जानते हैं, ये विश्वास होना चाहिए कि वो सब ठीक कर रहे हैं। जब हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जा रहा था, 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, राजा तो मान के थे चलो छोड़ देते हैं, अब क्या कर सकते हैं, बाकी लोगों ने बोला नहीं नहीं कुछ हिंदू ने बोला भाई अगर ये इस प्रकार मुसलमान होकर हरिनाम का जप करता रहेगा और आप छोड़ देंगे तो कल को हमारे और मुस्लिम भी क्या होंगे, वो भी हरिनाम करने लग जाएंगे, हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, तो इसको 22 बाजारों में पिटवाओ और जब तक मर ना जाए तब तक मारो, और अगर नहीं मरे तो जो मार रहे हैं उनको मारो। तो 22 बाजारों में घसीट कर ले गए, खूब पीटा, और मजाल है हरिदास ठाकुर जी को कुछ हो रहा हो, बाजार के खड़े हुए लोग इतना वेदना प्रकट कर रहे थे कि हे भगवान हे भाई असुर, मतलब उनको जो मारने वाले थे कि छोड़ दो प्लीज मत मारो उनको, हमसे पैसे ले लो, ब्राइब दे रहे थे कि आप ये ले लो छोड़ दो, मुस्लिम तक प्रार्थना करते हुए छोड़ दो इतना मत मारो, क्या करा इसने, लेकिन वो कहते अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ऐसी प्रार्थना मेरे लिए थोड़ी करने आओगे राजा के पास, नहीं समझी, जब वो हमें मारेगा, जब हमने इसको नहीं मारा तो फिर हम तो गए, तो इसलिए मारना पड़ रहा है। तो मारते गए 22 बाजार में, और हरिदास ठाकुर जी को केवल एक ही चीज थी जुबान पर, क्या, जब किसी को मार पड़ रही तो क्या जुबान पे होता है, बचाओ बचाओ, है ना। और हरिदास ठाकुर जी केवल पवित्र नाम का जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, किनके लिए, जो मार रहे हैं, कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा कर देना, इनको क्षमा कर देना, है ना, ऐसा होता भक्त का हृदय। और जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बुलाया तो महाप्रभु ने दिखाया कि हरिदास ठाकुर जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा जा रहा था और मैंने तो आपकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी भेज दिया था उनकी गर्दन काटने के लिए, है ना, लेकिन आपके मुंह से केवल निरंतर हरिनाम और निरंतर प्रार्थना की इनको कुछ ना हो, ये नहीं जानते कर रहे, नहीं क्षमा कर देना, तो मेरा सुदर्शन चक्र भी वापस आ गया, आपकी दयनीयता ने मेरा हृदय क्या कर दिया, विदीर्ण कर दिया, इतने दयनीय, मतलब इतनी दयनीयता आपके अंदर, आपने एक बार भी प्रोटेक्शन के लिए एक बार भी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि आओ मुझे बचाओ, एक बार भी नहीं बोला, तो मैं क्या करता, मेरा प्रिय भक्त पिट रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं स्वयं वहां पर अप्रकट रूप में आपके ऊपर आ गया, और जितने भी वो हंटर मार रहे थे वो आपको नहीं लग रहे थे, वो किसको लग रहे थे, मुझे लग रहे थे, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो मैंने अपनी चादर हटाई, पीछे मुड़कर देखा सारे हंटर के निशान भगवान चैतन्य महाप्रभु की कमर, योग क्षेम व्यहा में हम, मैं वहन करता हूं, हरिनाम कीर्तन संकीर्तन चल रहा है श्रीनिवास ठाकुर जी के आंगन में, महाप्रभु ने कहा हे श्रीवास तुम्हारा घर परिवार है, बच्चे बाल सब हैं, तुम कुछ काम धंधा तो करते हो, मेरे साथ रहते हो मृदंग करताल बजाने, मेरे साथ नृत्य करते हो, भाई तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा, कन्विक्शन देखिए श्रीवास ठाकुर जी कहते कि हे महाप्रभु जहां आप हैं वहां तो सारी लक्ष्मी भी वहीं पे है ना, कहते नहीं भाई खाने पीने के कुछ तो करोगे काम धंधा, कहते कुछ नहीं, कहते मैंने तो बोल रखा है लक्ष्मी जी को कि मैं 3 बार ताली मारूंगा, से 1 2 3, और मुझे क्या मिल जाना चाहिए, 3 ताली से पहले सब कुछ अरेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं कहां बिजी हूं, भगवान के संकीर्तन में बिजी, और जिस दिन नहीं आया तो 3 ताली मार के मैं अपने परिवार के साथ गंगा में कूद जाऊंगा। कहते मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट है लक्ष्मी जी के साथ, जिस दिन नहीं पूरा हुआ तो विद फैमिली गंगा में कूद के प्राण दे देंगे। कहते आज तक कोई दिन नहीं आया, ताली बजानी नहीं पड़ी। कहते धन्य हो। अरे भैया, जहां स्वयं भगवान है, जिसका इतना कन्विक्शन है भगवान की भक्ति में, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो हम चिंता करते हैं, जो ये परेशान है, ये केवल अननेसेसरली इच्छाओं की वजह से परेशान है। समाज में लोग क्या कहेंगे, ज्यादातर हम लोग अपने लिए नहीं जीते, लोगों के कहने पर, लोगों के बोलने पर, समाज की दृष्टि से, उनके हिसाब से कर्म करते हैं। लोग क्या कहेंगे, है ना, बोला था पिछली बार, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए जी रहे हैं कि वो कहेंगे कि आज तक तुमने कोई एडवांसमेंट ही नहीं किया, आप तो अभी भी वही रह गए, साइकिल पर जाते हो, साइकिल पर आते हो, गाड़ी भी नहीं है आपके पास, आपका अभी भी घर ऐसा ही है, इसमें सफेदी नहीं हुई 5 साल से, क्या बोलेंगे लोग, आपके पास केवल 2 ही जोड़े कपड़े हैं, आपके पास अभी इतनी सी सैलरी है आपकी, आप बस बिजनेस चल रही है, मैं थोड़ा कम कमाते हूं। लोगों के लिए जी रहे इस संसार में, इसलिए जब भक्ति में जुड़ते भी हैं तो बड़ी आलिशान भक्ति करते हैं। आलिशान भक्ति का मतलब कि ऐसा दिखना चाहिए आई एम द सेटल्ड मैन, मतलब सब ठीक चल रहा है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, इस वाले स्कूल में है, इस वाले में नहीं, इस वाले में, जिसमें 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, है ना। अभी भक्त बन गए तो सोना चांदी भी नहीं दिखा सकते, पहले तो ओकेजन ढूंढते थे कहां दिखाएं, अब भक्त बनने के बाद खर्चे खत्म, प्याल लहसन खत्म, मानसार सब खत्म, पैसा पैसा बच रहा है सब, क्या करोगे इसका, खर्चे नहीं होते लोगों के, जबरदस्ती है ना, अब जबरदस्ती उल्टे सीधे काम तो कर नहीं सकते, तो भक्तों का जीवन बड़ा सादा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर दिखावे की जिंदगी में जाएंगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जोन सी मर्जी गाड़ी ले लीजिए, रेड लाइट पे आपको उससे महंगी गाड़ी मिलेगी मिलेगी। मिलेगी नहीं? और अगर उसने आपको देख लिया ऐसे करके, खत्म। जाए तो विषयान पुंसा संघा स्टेशन पर जाए, संघ इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ये करना है, फिर ये भी करना है, फिर चाहे चोरी करके करूं, फिर चाहे मैं गलत काम करूं, टैक्स बचाऊं, अरे सिंपल नहीं जी सकते क्या, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं सारी चीज। और एक व्यक्ति का साधारण जीवन जीने का प्रयास करे, है ना, कितना आसान है कि एक घर चाहिए, अब वो घर छोटा भी तो चलेगा ना। हम एक भक्त के पास गए गीता कराने के लिए, वो कहता, उसने तो हृदय खोला, कहता जी मैं बहुत खुश था आज से कुछ साल पहले, बहुत खुश था, एक वाइफ 2 बच्चे, 2 रूम का फ्लैट था मेरा, सब आपस में रहते थे, दिखाई देते थे, इकट्ठा खाते थे, टेलीविजन भी इकट्ठा ही देखते थे, मतलब इतना अच्छा जीवन जी रहा था। लेकिन दुनिया को दिखाने के चक्कर में धन बढ़ गया। अब धन बढ़ा है तो दिखाना भी तो है लोगों को कि भाई मेरे को पैसा बढ़ रहा है, तो कैसे दिखाएगा, वो गाड़ी का साइज बढ़ाएगा, कपड़े कौन से पहनेगा, वो केवल ब्रांडेड, घड़ी कौन सी पहनेगा, 1-2 लाख वाली, कैसे पता चले लोगों को, टाइम तो वो भी दिखा रही है 300 वाली और 3 लाख वाली भी दिखा रही है, कैसे बताऊं। फिर मकान, नहीं नहीं ये कॉलोनी मेरे को वैसी पसंद नहीं थी, चलो अब कहीं और चले, तो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर बड़ा मकान हो, फिर सबको इनवाइट करेंगे अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, आइए हम घर में पूजा करवा रहे हैं, पूजा क्या करवा रहे हो आप, अपने अपनी पूजा करवाने के लिए करवा रहे हो कि मेरा घर, मैंने पैसा लगाया भाई, सबको बुलाऊं, और सबको चलने वालों को सबको बुलाता है, ये देखिए, और कमरा खोल खोल के दिखाता है, ये टॉयलेट देखिए हमारा, ऐसा है कि बाहर आने का मन नहीं करता, ये बच्चे का कमरा देखिए, ये मेरी वाइफ का कमरा देखिए, सब अलग अलग है। वो परेशान व्यक्ति, अब कितने घर में लोग, चार, मकान दो तीन फ्लोर का, कैसे सोए, एक हाथ उस कमरे में, एक टांग उस कमरे में, कैसे सोए व्यक्ति, सोना तो एक ही कमरे में ना। एक भक्त थे, पंजाबी वाक्य थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं कौन सी रोड की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला गुरु जी हम मकान बना रहे हैं, आप बस बनते ही ना आपका कीर्तन करवाना है, बस आप बस चरण डाल दीजिए बस। हमने कहा ठीक है बनने दीजिए, आएंगे। हमें पता भी नहीं चला कि बन गया मकान, शिफ्ट भी हो गए, भगवान भी भूल गए, भक्तों को भूल गए, नहीं नहीं ठीक है। और कितने रहने वाले घर में, चार लोग और 1100 पता नहीं शायद 2200 गज का मकान, और डबल फ्लोर में बनाया है, मतलब अंदर जाओ तो लगता है भूत बंगला, मतलब कुछ गिरे तो डर लगे, उस कोने में कुछ गिरे, कोई जो कीड़े बोलते चिर 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 करके, कुछ ऐसा भी हो तो भी डर लगे, मतलब ऐसा ऐसी हालत हो गई कि मतलब हर समय डरे डरे रहते। तो फिर दिखाना इस प्रकार, व्यक्ति कहता मुझे कि कुछ समय पहले की बात है, हम चारों दिखते थे, बात करते थे, शेयर करते थे डाइनिंग टेबल, कहता अब क्या स्थिति है कि मैं आता हूं कोई गेट पे नहीं है, मेड है, छोटू है खाना बना रहा है वो गर्म कर रहा है, वाइफ अपने कमरे में बैठी है, बेटी अपने कमरे में ऊपर, लड़का अपने कमरे में, मैं फोन कर रहा हूं उसको, बेटा कहाँ है, घर में है, बाहर है, दिल्ली में है, किधर है, वो कहता पापा मैं घर पे ही हूँ, कहता अच्छी बात है बेटा नीचे आ जाना इकट्ठा खाना खाते हैं, कहते पापा बट मैंने तो पिज्जा मंगा रखा, ऑर्डर दिया भाई, और पिज्जा आते मैं वो हो गया काम, मतलब कहते मैं तरस गया शक्लें देखने के लिए, कहते इसका मतलब ये तो अभिशाप बन गया मेरे लिए, और अभिशाप है, कहते हम लोग इकट्ठे बैठते हैं आसपास के सोसाइटी के लोग कि क्या करें जिससे कि हम लोग संगठित हो सके, फिर से जीवन के मूल्य को समझ सके, लोग परेशान है, लेकिन हाँ एक अच्छा फील है उनके पास, क्या 16वां अध्याय पढ़िएगा, उसमें वो जो फीलिंग आती ना वो लिखी, अब मेरे पास इतना है, अब कुछ समय बाद इतना हो जाएगा, अब मैं सारे रिश्तेदारों को दिखाऊंगा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये फील है बस, और जीवन नहीं। तो कहां से शुरू किया, कहां से लिया था, बहुत दूर निकल गया मैं, देखा देखी करते हैं, और इसलिए हम भगवान की शरण में भी जब आते हैं तो इच्छाओं के साथ आते हैं, जबकि भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरे इस बच्चे का, पहली बात तो देखिए भक्ति का जो ये जो व्यवहार है ना करोड़ों लोगों में, बहुत कम लोग, भगवान ने पहले ही बोला मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित सिद्धे, कोई एक आधा ही आएगा, और पहले और दूसरा बोला भगवान ने कि मैं सम हूं, मतलब सब सर्वभूतेषु, मैं समान हो सकते थे, लेकिन भक्तों के लिए स्पेशल प्रिविलेज कि यस, क्योंकि वो मेरे भक्त हैं इसलिए मैं स्पेशली उनको उनके ऊपर कृपा करता हूं। तो पूरी सृष्टि में कितने लोग हैं बताइए जो भगवान कृष्ण की भक्ति में, एक तो वैसे जो हम तो कृष्ण के भक्त हैं जी, एक तो ऐसे वाले जिनको मालूम नहीं कि कृष्ण भगवान क्यों है, बस अच्छे लगते हैं, साथ में राधा रानी खड़ी है और गीता वीता बोली तो इसलिए लोगों को अच्छे लगते हैं कुछ, तो है ना, कुछ को उनको योग की शिक्षा दी इसलिए अच्छे लगते हैं, कईयों को इसलिए लगता है कि उन्होंने कर्म के विषय में बोला है और कर्म कर करके मैं आज इस तरह का व्यक्ति बना हूं तो इसलिए भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ज्ञान के विषय में अच्छे लगते हैं, तो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग भगवान को सच में भगवान के प्रयास करें समझने का भक्ति करने का, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, और ऐसे लोगों में भी जो लोगों की इच्छाएं अभी भी हैं तो उन्हें चाहिए कि और अच्छे ढंग से भक्ति कर हम ये समझ जाएं, क्योंकि जिस तरह से स्तर बढ़ेगा उसका विश्वास बढ़ेगा, कनिष्ठ फेथ बोल सकते हैं, मध्यम फेथ बोल सकते हैं, उत्तम फेथ बोलते हैं, इन्हीं तीन अधिकारों से व्यक्ति की भक्ति आगे बढ़ती है। तो कनिष्ठ फेथ के लोग हैं जो अभी कृष्ण को भी जानते हैं औरों को भी जानते हैं, मध्यम स्तर के फेथ वाले लोग हैं जो भगवान पूरी तरह जानते हैं समझते हैं और विश्वास पूरा अपना पारंगत करने का प्रयास करते हैं, उनको पूरे उनको मालूम है किसकी शरण में जाना, कुछ कहना भी है तो भगवान को कहना है ना, लेकिन जो उत्तम श्रेष्ठ के उत्तम स्तर के भक्त है जिनका फेथ भगवान में पूरी तरह है, वो कभी भी भगवान को तंग नहीं करते, वो नहीं चाहेंगे कि हम भगवान को डिस्टर्ब करें। जैसे पिछली बार भी शायद बताया था, छोटा सा प्रसंग सुनाया था कि एक बार एक अर्जुन को लगा कि मैं भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूँ, है ना। तो भगवान को लगा कि ऐसा भी भाव आना ठीक नहीं है भक्त में, तो वो लेकर गए एक बार एक ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण बैठा था, तो उसके पास ब्राह्मण होने के बाद भी तलवार थी। तो अर्जुन को लगा इसे तलवार क्यों रखी हुई, तलवार तो क्षत्रिय के पास होती। ब्राह्मण से पूछा कि आप बताएं अपनी तलवार क्यों रखी हुई। कहते बस कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ। कहते किन को ढूंढ रहे। कहते मैं ढूंढ रहा हूँ वो प्रहलाद को, प्रहलाद छोटा सा प्रहलाद को ढूंढ रहा हूँ। कहते क्यों भाई, उसको क्यों ढूंढ रहे हो। कहते ऐसे ही बस उसके पिताजी मारते थे और ये सब होता था, तो उसके चक्कर में भगवान को खंभा फाड़ कर निकलना पड़ा, तो भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा। कहते अच्छा। कहते और किसको ढूंढ रहे हो। कहते मैं द्रौपदी को ढूंढ रहा हूँ। कहते उसको क्यों ढूंढ रहे हो। कहते बस ऐसे ही भगवान भोजन कर रहे थे उस समय पुकारा कि भगवान मेरी लाज बचाई, और भगवान को भोजन छोड़कर उसकी रक्षा करनी पड़ी। तो कहते मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, भगवान भोजन कर रहे भाई। कहते और किसको ढूंढ रहे हो। कहते और अर्जुन की, अर्जुन को भी ढूंढ रहा हूँ। कहते उसको भी ढूंढ रहे हो। कहते इतना मूर्ख था परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, मालूम है भगवान ने विराट को सब कुछ सबको दिखाया, उसको रास्ते में हर चीज करी, मालूम भी भगवान है। कहता उसके बाद भी उसने उनको अपना सारथी बनाया और लेफ्ट मोड़ने के लिए राइट मोड़ने के लिए हाथ मारता था, इधर मोड़ो इधर मोड़ो। कहते मेरे को मिल को जाए पर। तो अर्जुन ने कहा भाई एक अभी आया और भाग्य हो। कहते हे भगवान इसको पता चल जाए तो मेरे को काट डालता ही। और उसको लगा कि वास्तव में ये भाव भगवान के प्रति कि अगर किसी ने किसी की रक्षा के लिए भगवान चले भी गए तो वो भी चाहता नहीं कि भगवान डिस्टर्ब हो उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो ये तो बच गया मैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं समय काल परिस्थिति कर, लेकिन भक्तों का भाव यही रहता है कि हम ना पुकारें अहेतु की अप्रतिहता, है ना। तो इस प्रकार जब भक्त लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान निश्चित रूप से स्वयं आके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहां पर भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा क्योंकि अर्जुन सॉरी प्रहलाद जो है उसको खूब यातनाएं दी गई थी और जिस तरह का विभत्स रूप लेकर आए थे तो कम से कम काफी लोग होने चाहिए थे मारने पीटने के लिए, लेकिन एक को मार के लगा कि और कौन है, व्हाट नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट, है ना। अभी क्या है, शांत करना है। शांत करने के लिए ब्रह्मा जी स्तुतियां कर गए, शिव जी ने स्तुति करी, सब देवताओं ने, किन्नरों ने, सब ने, गंधर्वों ने भगवान की स्तुति करी। उनको लगा अब शांत होंगे, अब शांत होंगे, है ना। नहीं शांत हुए। फिर उनको लगा लक्ष्मी जी को भेजते हैं, लक्ष्मी जी करेंगी शांत। और लक्ष्मी जी भी चकित थी, कोई ऐसा रूप तो मैंने भी नहीं देखा भगवान को, इतना विभत्स इतना क्रोध के साथ। तो फिर इनको भेजा प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां करी भगवान की। और आज के श्लोक में कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव जी आप अपना क्रोध अब त्याग दें क्योंकि जो मेरे पिता हैं हिरण्यकश्यप वो मारे जा चुके हैं और अपने पिता की तुलना कर रहे हैं बिच्छू और सांप से। ये ऐसे सर्प और ये जो बिच्छू है ये ऐसे जीव हैं जो ईर्ष्यालु हैं, बिना किसी बात के भी किसी को भी काट देते हैं। अन्य जीवों में तो आप देखेंगे कि आप उनको उनको जब लगेगा कि आप कुछ कहने वाले हो, आप जो कुछ उनके प्राणों को खतरा है तब जाके वो कुछ करते हैं, है ना। लेकिन इन जीवों में क्या है कि आप चाहे सो रहे हो चाहे जाग रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो ये आपको मार देंगे। तो इसलिए वैष्णव जन भी चाहते हैं कि ये लोग मर जाए। एक बार शिला प्रभुपाद जी आश्रम में थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने ऊपर से बोला सांप को तुरंत देखे मारो उसे मार दो उसे, और मार दिया गया। तो प्रभुपाद जी को लगा रही मेरे गुरुदेव परम वैष्णव एक सांप को मारने को बोल रहे हैं, ये तो जीव है। तो उनको थोड़ा सा लगा हृदय, लेकिन जब ये प्रसंग पड़ा जहां पर आज ये बोल रहे हैं कि वैष्णव जन भी प्रसन्न होते हैं सांप और बिच्छू को मरने में क्योंकि वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो कष्ट पहुंचाते हैं दूसरों को, वो ये नहीं देखेगा वैष्णव है, ये नहीं देखेगा वो कुछ है, मार देगा, तो उससे भयभीत रहता है। इसलिए भय जो है भक्तों का समाप्त हो जाए। तो यहां बोल रहे कि अब वो क्योंकि मर चुके हैं, क्योंकि बिच्छू और सांप के मरने पर तो वैष्णव भी खुश होते हैं भक्त भी खुश होते हैं, इसलिए आप अगर अपना गुस्सा त्याग देंगे क्योंकि ये मर चुका है ये सर, तो वैष्णव जन प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, और वैष्णवों के प्रसन्न होने से आपको प्रसन्न होना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी को जब ये मालूम पड़ा तो प्रभुपाद जी को अपनी बात का आंसर मिल गया। क्योंकि जो भय है ये भय जो है लोगों की भक्ति नहीं करने देता है ना, भय के कारण कहां हो पाती भक्ति, आउट ऑफ फियर तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भक्त भी भय में होते हैं तो भक्ति नहीं कर पाता व्यक्ति ना, कि कैसे करूंगा ये हो जाएगा तो उनका विश्वास कम हो जाता है। लेकिन शास्त्र ऐसा भी बोलते हैं कि जो श्रीमान भय है, जो भय ये भी भगवान के नाम से डरते हैं। यन्नाम संस्कृतिम घोरा, भगवत भागवतम में पहले से हमने बोला कि जो व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर में संसार में पड़ा हुआ, बार बार रिपीटेड बर्थ ओल्ड एज डेथ के चक्कर में पड़ा हुआ है, ऐसा संघर्ष करता हुआ व्यक्ति भी जानकर या अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले ले, यन्नाम भगवान का नाम उच्चारण कर ले एक बार, तो उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के नाम इतने पवित्र हैं, ऐसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए व्यक्ति के भी मार्ग खुल जाता है। और जो स्वयं भय है, भय स्वयं भयम, वो डरता है भगवान के नामों से, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भगवान का नाम लेगा तो ये अभय हो जाएगा। इसलिए गोविंद दास जी ने भगवान का बड़े सुंदर भजन में उनको क्या बोला, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। किनका भजन करता हूं मैं, श्री नंद नंदन का, कि जिनकी शरणागति लेने से व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका भय दूर हो जाता है, अभय चरण अभय हो जाता है। तो मैं अपना मन वहां लगाना चाहता हूं। तो इस प्रसंग में रुराज महाराज जी कह रहे हैं कि आप जो है पूरी तरह से शांत हो जाएं, हिरण्यकशिपु जी मर चुके हैं, और इसके बाद हिरण्यकशिपु मर गए हैं, भगवान ने क्या करा, अब अपना हाथ जो है ना इससे पहले प्रहलाद के सर पर लगाया और उसके बाद स्तुतियां करी। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना करी थी, भगवान प्रकट हुए थे तो शंख लगाया, उन्होंने प्रार्थना करी। अब भगवान के एक भक्त और जिन्होंने पहले प्रार्थनाएं करी हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर देखें, जो इस देवता है, यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, इनकी प्रार्थनाओं में आप देखेंगे कि हाँ बड़े डरे हुए थे, बड़ी समस्याएं थी, इन्होंने हमारी पत्नियां ले ली थी, इन्होंने ये कर दिया था हिरण्यकशिपु ने, तो इस प्रकार से भयभीत होकर उन्होंने प्रार्थना करी कि हाँ बाबा हम लोग अभय हो गए क्योंकि आपने इसको मार दिया। और भक्त प्रहलाद महाराज इतनी सुंदर दही से दयनीय प्रार्थना कर रहे हैं, ये सारी प्रार्थनाओं में चल रहे हैं, और अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज अपना गुस्सा शांत कर, ठीक है ना, तो भगवान फिर अब शांत भी हो जाएंगे और भगवान उनको और भी कुछ बोलेंगे कि मांगो क्या चाहिए, है ना। तो भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, कहते हैं कि तो हम मैं बिका हुआ हूं अपने भक्तों के हाथ से, वो जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन उस स्तर का फेथ, उस प्रकार का विश्वास हमारा होना भी चाहिए भगवान के प्रति। और फिर भगवान के भक्त कुछ चाहते भी नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है भगवान के लिए, ये भगवान की समस्या है कि मेरा भक्त सेल्फलेसली मेरी भक्ति कर रहा है, दैन्यता की हाइट इसने टच कर दी है, इस पे कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा नाम लिए जा रहा है, मेरी भक्ति में अटूट विश्वास करके अहेतु की अप्रतिहता मेरी भक्ति कर रहा है हर समय, ये कुछ मांगे तो सही, कुछ बोले तो सही, इशारा तो करे, मैं तुरंत आ जाऊंगा मदद करने के लिए। लेकिन भक्त क्या करते हैं, नहीं हमने पढ़ाया अहेतु की करनी है, अहेतु की, हमें तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान अपने भक्तों का वो आनंद जो उनको महसूस होता है भगवान के अहेतु की भक्ति में, उनके विरह में, उसको महसूस करने के लिए भगवान स्वयं, क्योंकि कहते हैं मैं गोपियों आपका भी नहीं उतार सकता मैं कर्ज, जिस प्रकार आपने अपना त्याग दिखाया है और मैं कितना समय आपसे दूर रहा, वो जो विरह आपने सहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी उसको सहन करूं, मैं भी उसको टेस्ट करूं। तो स्वयं भगवान आते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में, उन फीलिंग्स को देखने के लिए, समझने के लिए। और इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो बिका हूं अपने भक्तों के, मैं उनके अधीन रहता हूं। तो अपने अधीन बनाने, देखिए भगवान के अधीन सब कुछ, मया दक्षिण प्रकृति, भगवान कह रही है प्रकृति भी मेरे अधीन है, यहां तक कि बताते हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, भगवान कृष्ण ही है सब कुछ, बाकी सब उनके दास हैं, चाहे वो कितने इनकार्नेशन, बलराम जी भी उनके दास शेष के रूप में उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, मृदंग कृपाल के रूप में एक्सपेंशन करके उनकी सेवा कर रहे हैं। अन्य अवतार भी सारे वो भी भगवान के ही क्या है, दास। और यहां पर भगवान कहते हैं नहीं नहीं मेरे जो भक्त हैं मैं उनका दास, मैं उनके हाथों बिकाऊ, ठीक है ना। तो इस प्रकार भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में सुंदर जो है डीलिंग्स रहती हैं, वो तभी हो पाएंगी जब व्यक्ति निश्चल हो, निष्कपट हो, अकिंचन हो, है ना, और सदैव भगवान का भक्ति में लगा रहे प्रहलाद की तरह, ठीक है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को जिज्ञासा या प्रश्न है, ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की हिताय हो।